राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद नाम स्कान अहमदाबाद में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के पांचवें अध्याय में नारद को कैसे दक्ष ने श्राप दिया इस विषय का श्रवण वर्णन कर रहे हैं। और आज अभिराम ठाकुर जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में श्रीधामा था और जो चैतन्य महाप्रभु लीला में अभिराम ठाकुर या रामदास के नाम से नित्यानंद के संग में रहे उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। सो आइए पहले हम आज का श्लोक पढ़ते हैं। छठा स्कंद पांचवा अध्याय 31वां श्लोक। जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग ये है कि दक्ष प्रजापति जो स्वयं भूमनु के समान समय में शंकर जी का अपमान करने से बकरी का सर लगा तो बकरी के सर से लज्जित होकर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु की कृपा से दोबारा प्रचेताओं के पुत्र दक्ष के रूप में प्रकट हुआ और फिर प्रजापति के पद के ऊपर प्रतिष्ठित होकर जब सृष्टि करने का काम उनको दिया गया तो अक्षिणी जो पंचजनी प्रजापति की पुत्री उनकी पत्नी हुई उनसे उन्होंने 10,000 जो पुत्र पैदा किए उनका नाम हरियाशव और वो पिता की आज्ञा से प्रजा की उत्पत्ति के लिए तपस्या करने के लिए जहाँ सिंधु महा नदी हिंद महासागर में मिलती है उस स्थान को नारायण सरोवर कहते हैं वहाँ तपस्या कर रहे थे और तपस्या से हृदय उनका पवित्र हो गया तो नारद जी ने आके उनको उपदेश दिया और नारद जी के उपदेश में दस ऐसे रूपक हैं, दस ऐसी एलोगरीज हैं, और नारद ने उसका अर्थ नहीं बताया, लेकिन हृदय उनका इतना शुद्ध हो गया था, उन्होंने उसका अर्थ समझ लिया और फिर वापस दुनिया में कर्मकांड में नहीं प्रवेश किया और वो साधु बन गए। ये समाचार जब दक्ष को नारद ने सुनाया तो दक्ष को बड़ा दुख हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने दक्ष को फिर राजी कर लिया। दक्ष ने 1000 पुत्र फिर उत्पन्न किए, उनका नाम हुआ बहुला, हाँ शबलाशव कहते हैं। ये भी उधर ही तपस्या करने गए और 2-3 महीने तपस्या किया, हृदय पवित्र हो गया, तो नारद जी फिर उनके पास आ गए, उनको भी वही उपदेश दिया जो पहले हरियाशव को दिया था। और फिर नारद एक और श्लोक कह रहे हैं उपदेश देने के बाद, ये श्लोक हम आज पढ़ेंगे। इसका मतलब नारद जी दक्ष प्रजापति के 1000 पुत्रों को उपदेश तो वही दिया जो पहले उनके बड़े भाइयों को दिया था, उसके बाद ये श्लोक कह रहे हैं। तो आइए इस श्लोक को पढ़े, फिर उस उपदेश का अर्थ भी समझें। तो पढ़िए, भ्रातृणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवे स पुण्यबन्धो पुरुषो मरुत्तभिस्सह मोदते। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवे स पुण्यबन्धो पुरुषो मरुत्तभिस्सद्मोदते। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवे स पुण्यबन्धो पुरुषो मरुत्तभिस्समोदते। पाठ कीजिए। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवेत् समोदते। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता दृष्टे धर्मवे सौपुण्यबन्धो पुरुष मरुत्तभिस्समोदते। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवे सपुण्यबन्धो पुरुष मरुत्तभिस्समोदते। माताजी बोलिए बोलिए। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता सोऽनुतिष्ठति धर्मवे सपुण्यबन्धो पुरुष मरुत्तभिस्समोदते। मातॄणां प्रायणं भ्राता सोऽनुतिष्ठति धर्मवे सौपुण्यबन्धो पुरुष मोदते। ये ते जानता सबुण्यमान्ना पुरुषा धर्म भी सबोधते। सो नारद जी कहते हैं भ्रातृणाम प्रायणम भ्राता, प्रायणम का मतलब है रास्ता लेना, भ्रातृणम प्रायणम भ्राता, जिस रास्ते पे भाई गए बड़े भाई गए उसी रास्ते में जो जाता है, अथवा इसका अर्थ है कि बड़ों का जो पीछे चलता है। कैसे बड़े होने चाहिए जिसके पीछे चलना चाहिए? जो अनुतिष्ट धर्मवित, जो धर्म के रास्ते को जानते हैं, जो धर्म को रास्ते को जानते हैं और जो धर्म के रास्ते के ऊपर चलने वाले भाइयों के पीछे चलते हैं, स पुरुष बंधु स पुण्य बंधु पुरुष, वो पुण्य व्यक्ति है। बंधु, बंधु का मतलब रिश्तेदार उन भाइयों का, पुरुष का मतलब वो व्यक्ति बहुत पुण्यवान है, पुण्यवान व्यक्ति है। इसका मतलब समझदार, बड़े धर्म को जानने वाले के पीछे चलने वाला, धर्म को जानने वाला पुण्य का भागी होता है। कहाँ जाता है? उदाहरण देते हैं, मरुद भी समोदते। मरुद भी, ये 49 मारुत जो है, ये देवता, ये दिति के पुत्र हैं, वो सब वैसे दैत्य होते हैं। इंद्र ने इसको एक को 7 टुकड़े किए तो भी नहीं मरे, मारो मत, फिर 7 को काट का 49 हो गए, मारो मत, तो वो जीवित हुए, उनका नाम हुआ मारुत। और इंद्र ने कहा कि मैं दिति आपके उदर में गया तो ये मेरे सहोदर है, सहोदर मैंने उसी पेट में प्रवेश किया मैंने, तो मैं इनको देवता बनाता हूँ। तो जो ऐसे बड़ों के रास्ते पे भाइयों, जिस रास्ते पे गए हैं, धर्म को जानने वाले हैं, जो पुण्य है, ऐसे बंधुओं के साथ जिनका रिश्ता है, ऐसे लोग मारुत गणों की तरह, एक हवा है, मारुत का अर्थ है हवा, जो है आज़ाद, इसका मतलब बंधन से मुक्त होके साथ, मोदते का मतलब आनंद लेते हैं। तो ये है, नारद जी ने उनको संकेत किया कि आपके बड़े भाई देखो संसार में नहीं फंस गए, आप भी मत फंसना और आप भी उन भाइयों के पीछे चलना, क्योंकि धर्म को वो जानते थे, आपके जीवन में पुण्य उदय होगा और आप भी मुक्त हो जाएंगे और वापस इस संसार में नहीं फंसेंगे। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। इसके ऊपर फिर ये सब लोग सब बैठ के चिंतन करेंगे और ये भी उसी निर्णय पर पहुंच जाएंगे जैसे इनके बड़े भाई पहुंचे, और ये भी साधु बन जाएंगे। तब जाके नारद से सुनेगा दक्ष, तो नारद को, नारद के ऊपर दक्ष को क्रोध आ जाएगा, तब वो दक्ष नारद को शराप देगा। ये अध्याय का नाम है। सो पहले हम इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पढ़ते हैं और उसके बाद जो असल में सिद्धांत समझना चाहिए इस पूरे अध्याय में, वो ये है, जो 10 बातें नारद ने कही है जिनसे इन बच्चों के जीवन में त्याग और वैराग आया है, उस 10 बातों को समझना चाहिए। हम उन 10 बातों को समझ जाएं जीवन में, तो हमारे जीवन में भी वैराग पैदा होने का अर्थ है भगवान से विशेष राग पैदा हो जाए, भगवान से प्रेम पैदा हो जाए, तो संसार से अपने आप त्याग हो जाएगा। तो वो 10 बातें हैं, वो विशेष हमको समझनी चाहिए, इस पूरे अध्याय का सार वो है। तो आज के श्लोक का जो अनुवाद है वो ये है, धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। ये पहली लाइन का अर्थ है, जो धर्म को जानता है, धर्मवित, वो अपने भ्रातृणाम बड़े भाइयों का, वो जो दूसरा शब्द है प्रायणम का मतलब उनके पीछे चलता है। इसके दोनों भाव होना चाहिए, कि अगर धर्म के रास्ते पे भाई जानते गए हैं तो उनके पीछे जाना चाहिए जो धर्मविद दोनों से लग जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो धर्म के रास्ते पे नहीं है, उनके पीछे जाना जरूरी नहीं। जो धर्म के रास्ते पे गए हैं, जो धर्म को जानते हैं, वो उनके पीछे जाते हैं, उनका अनुगमन करना चाहिए। और दूसरी लाइन में है, अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से ऐसे पवित्र भाई मरुत जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है, जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेहिल है। अब कहते जो अपने भाइयों से प्रेम करता है वो ऐसा उत्तम पद प्राप्त करता है जहाँ उसको आनंद मिलता है, जैसे मरुत साथ में रहते हैं। देखो, एक तो बहुत भाइयों के जब शब्द यहाँ आया है तो सारी रामायण में भाइयों के प्रेम का वर्णन है, चार भाइयों में कैसा प्रेम था। न तो राज का लोभ भाइयों में झगड़ा करा सका और न ही कोई संसारी और संकट भाइयों में झगड़ा करा सका। महाभारत के इतिहास को देखें तो पांच पांडु भाइयों में झगड़ा कराने का कोई कारण नहीं रहा। नारद ने एक दिन आके कहा था कि भाई देखो, आप कोई नियम बनाना, एक पत्नी आपकी है और पांच भाई उसके पति है, झगड़े का कारण बहुत उपस्थित हो सकता है, इसलिए आप जीवन में कोई नियम बना लो। तो उन्होंने ऐसा नियम बनाया, पांच भाई पांडव कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। फिर दस प्रचेता जिनका पुत्र है दक्ष, ये दस भाई आपस में इतना प्रेम से रहते थे कि दस के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। उनका तो श्रुति फल ये है कि प्रचेताओं की जो कथा सुनेगा उनके भाइयों में भी प्रेम होगा। और यहाँ मरुतगणों का उदाहरण चौथा है कि उन पचास भाइयों में आपस में प्रेम है, कभी अलग नहीं हुए। तो यहाँ ये श्लोक ऐसे ध्वनित कर रहा है, और हम भी आपस में सब कहते हैं कि अंग्रेजी में गार्ड ब्रदर है। ये जो गुरु भाई शब्द है इसको अंग्रेजी में कहते हैं गार्ड ब्रदर। ये दो शब्द अंग्रेजी के जो है बहुत अच्छे हैं, वो हिंदी में इतने अच्छे नहीं लगते। गार्ड ब्रदर मतलब, क्योंकि हम एक भगवान की संतान है इसलिए आपस में भाई हैं। गुरु जी ने हमको भगवान का बोध करा दिया इसलिए हम सब भाई हैं, जो एक भगवान की सेवा में लगे। और दूसरा अंग्रेजी शब्द है डिसाइपलिक सक्सेशन, शिष्यों की परंपरा है, गुरुओं की परंपरा नहीं, शिष्यों की परंपरा है। जो अच्छा शिष्य बनता है वही परंपरा चलाता है। गुरु अपने आप को कोई भी घोषित कर सकता है लेकिन शिष्य अच्छा बनना मुश्किल है। तो ये दो अंग्रेजी के शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सब भगवान के नाते भाई बने हैं गुरुजियों की कृपा से तो हम सबको साथ रहना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है, जो जैसे बड़े भाई चले हैं उसके पीछे छोटों को चलना चाहिए। तो ये भाई जो शब्द है ये सब जगह लगा दीजिए अपने जीवन में, गुरु भाई लगा दीजिए, भाई अपना लगा दीजिए, धर्म का भाई लगा दीजिए। वैसे तो सभी भाई हैं क्योंकि भगवान सबका पिता है, वो है सही रिश्ता, असली रिश्ता, इसलिए साथ रहना चाहिए तो सुख भोगेंगे। अलग रहेंगे तो हमेशा परेशानी का कारण बनेगा, और संसार में सब अलग रहने के चक्कर में इसलिए सब परेशान है। अब साथ कैसे रहा जाए इसमें बड़ा बलिदान देना पड़ता है। तो यहाँ लिखा है कि जो साथ रहता है वो सुख भोगता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, विभिन्न भौतिक संबंधों में अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग विभिन्न लोकों में भेजे जाते हैं। ये कैसा एक अर्थ है इसका, इसका अर्थ ये है कि जो जिसकी पूजा करता है उस लोक में जाता है। ये जो ये लाइन है इसका अर्थ है, जैसे देवताओं की पूजा करेगा देवलोक में जाएगा, भूत की पूजा करेगा भूत लोक में जाएगा, भाइयों के पीछे चलेगा तो मरुत लोक में जाएगा, क्योंकि वो भाई है तो मरुत लोक में जाएगा, इसका एक अर्थ ये हुआ। अब इसके पीछे प्रभुपाद जी दूसरी लाइन में लिखते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अपने भाइयों की अति आज्ञाकारी होता है उसे उनके ही जैसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और मरुत लोक पहुँचने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। इसका मतलब है जो भाइयों के पीछे चलते हैं वो मरुत लोक जाते हैं। लेकिन फिर भी नारद जैसा गुरु जब शिक्षा देता है तो प्रभुपाद लिखते हैं, नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों के दूसरी टोली को उनके अपने बड़े भाइयों का अनुगमन करने तथा आध्यात्मिक जगत पहुंचने के लिए सलाह दी। एकदम प्रभुपाद जी ने एक शब्द में परिवर्तन कर दिया, क्या कि मरुदगणों के पास नहीं जाएगा, ये जाएंगे भगवान के धाम में, क्योंकि जो शिक्षा उनको दी है भगवान के धाम में जाने की दी गई है। लेकिन उदाहरण इसलिए दिया गया है कि जो ऐसे प्रेम से साथ रह के उनके पीछे चलेगा तो उसी जगह पे जाएगा जहां वो गए हैं। तो ये श्लोक में दो बातें समझनी चाहिए, पहले क्या कहा था नारद ने, 10 बातें कही थी अगर किसी को याद है तो। पहली बात ये कही थी नारद ने कि इस धरती का अंत कहाँ है किसी को पता नहीं है, और उसका अर्थ हरियाशव ने निकाला था कि ये शरीर जो है ऐसा खेत है, ऐसी भूमि है जिसमें कब से हम कर्मों के चक्कर में पड़े हैं पता नहीं है। जीव आत्मा को कब ये शरीर लेना पड़ा है और कब इससे निकलेगा पता नहीं है। तो पहला ये है कि ये शरीर कई अनंत कोटि जन्मों से हम शरीरों का भोग करते आ रहे हैं, इसका अंत होने वाला है ही नहीं। करते क्या है, शरीर में भोग करने के लिए आते हैं। किसका भोग करते हैं, अपने कर्मों का भोग करते हैं। तो इसलिए सब श्लोकों के पीछे एक शब्द लगा हुआ है, फिर कर्म करने की क्या जरूरत है। जितने श्लोक है 10 के 10 उस सब में लिखा है, तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है, सकाम कर्म करने की क्या जरूरत है। जो शब्द है वो ये है, ऐसे लिखा हुआ, हाँ, कर्म भी किसी एक को खोलेंगे तो आ जाएगा। किम असत्य कर्म भी भवेत, किम असत कर्म भी भवेत, किम असत कर्म, असत कर्म मतलब शरीर को प्राप्त करने वाले कर्म। असत कहते हैं शरीर को, शरीर है असत, आत्मा है सत। तो शरीर को प्राप्त करने वाले कर्म करने का क्या फायदा। तो पहला क्या था, शरीर भोगने के लिए लेते हैं, और भोग किसका करते हैं, अपने कर्मों का भोग करते आ रहे हैं, सुख दुख का भोग करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं पता नहीं। और दूसरा प्रश्न के भोगता कौन है, तब क्या एक ही भोगता है, दूसरा का एक ही राजा है, एक ही भोगता है, उसका अर्थ निकाला एक भोगता तो भगवान है, हम तो भोगता है नहीं, तो हम भोगता होने की मूर्खता करके शरीर में फंस रहे हैं। अगर भगवान को भोगता मान के और उसकी सेवा में लग जाए तो मुक्त हो जाएंगे, ये दूसरी बात कह दी। और तीसरा का एक ऐसा बिल है उसमें जाने वाला वापस नहीं निकलता, इसका मतलब जो भगवान को भोगता नहीं मानता अपने आप को भोगता मानता है तो वो कहाँ जाता है, बोला एक बिल है, उसका अर्थ निकाला पाताल आदि लोक में जो जाते हैं वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। इसे नीचे वाले जो लोग हैं उसको बिल्व स्वर्ग कहते हैं, उनमें इतना सुख है कि जो जाता है वहां से वापस आता नहीं। और प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में भाव लिखा है कि ऐसे ही हरियाशो ने समझा, अगर कोई भगवान के धाम चला जाए तो भी वापस नहीं आता है तो हम बिल में क्यों गिरे, हम भगवान के धाम क्यों नहीं जाएं। तो शरीर से छूटने का क्या साधन है, भगवान के धाम वापस जाना, तो फिर शरीरों का दुख भोगना नहीं पड़ेगा। शरीरों का दुख भोगना क्यों पड़ रहा है, बोला एक वैश्या स्त्री है, उस अगर आप जाएंगे उस खड्डे के अंदर तो एक वैश्या स्त्री है। बोला ये वैश्या स्त्री कौन है, तब का ये वो बुद्धि जो रजोगुण और तमोगुण की है, वो बार बार आपको इधर से उधर लुभाती है, वो वैश्या स्त्री है। तो इसको लिखा है पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो चेतना भौतिक भोगवादी है वो वैश्या स्त्री है। तो ये बुद्धि को वैश्या स्त्री कहा गया है, वैसे भी पुरंजन में बुद्धि को पुरंजनी कहा गया है। जीव आत्मा बुद्धि और वो भी तमोगुण रजोगुण की बुद्धि के साथ जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं वेश्या के साथ विवाह कर लिया। और पांचवा है कि वेश्या का पति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो ऐसी बुद्धि को जो ग्रहण कर लेता है वो सदा इस दुनिया में इधर से उधर भटकता रहता है, परेशान रहता है। और उसके बाद में छठा कहा गया था कि उधर जहाँ जन्म लेना पड़ता है वहाँ एक नदी ऐसी बहती है जो दोनों तरफ चलती है। एक नदी तो हमेशा एक तरफ चलती है, वो दोनों तरफ चलती है। बोला ये संसार ऐसा है जिसमें जन्म भी होता है फिर मृत्यु भी होती है, सृष्टि होती है फिर प्रलय होती है। इसका मतलब और फिर ये नदी किनारे के ऊपर इतनी तेज चलती है जो एक बार इस नदी में गिर जाए निकल ही नहीं सकता। ये संसार सागर में चलने वाली नदी में एक बार कोई गिर जाए तो अपने आप उससे निकलना मुश्किल है जब तक कोई और निकालने ना आए, तो बहुत अंदर गोता खाना पड़ता है। और फिर कहा कि एक 24 तत्वों का 25 तत्वों का एक भवन है, और 25 तत्वों का भवन का अर्थ निकाला कि ये पूरी सृष्टि जो 24 तत्वों की बनाई हुई है ये तो भगवान बनाता है। तो जब भगवान बनाता है ये सब समाप्त होता है तो भगवान में समा जाता है। तो इसका मतलब जो सबका कारण है, इस जगत है कार्य, भगवान है इसका कारण और जगत है 24 तत्वों का बना हुआ। तो असल में उसको कारण को जानना चाहिए ना, कार्य में क्यों फंसना चाहिए। इस दुनिया में फंसने के बजाय दुनिया बनाने वाले को पकड़ लेना चाहिए ना। और नवा है कि वहाँ एक ऐसा तेज चक्कर चलता है जिसकी बहुत तेज धारी है, किनारे हैं, वज्र जैसा है। और उसका अर्थ निकाला हरियाचव ने कि ये काल चक्कर ऐसा है जो किसी के रोकने से रुकता नहीं है और सबको काल चक्कर चला रहा है। और जो काल चक्कर को समझता है कि ये भगवान का स्वरूप है और ये किसी को छोड़ता नहीं है, ये बड़ा बलवान है, इस काल के बंधन से जो मुक्त होना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए। वो आखिरी वाला लिखा था, दसवां है कि अपने असली पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वहाँ असली पिता का अर्थ लिखा है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, जैसे शास्त्र है उसके नियम नित्य निरंतर एक जैसे रहते हैं और उसको सिखाने वाला गुरु जी होता है, तब उसको कहते हैं कि इसकी दीक्षा हो गई, दूसरा जन्म हो गया। तो असल में गुरु की जो शास्त्र की शिक्षा है वहाँ प्रभुपाद ने शास्त्र को असली पिता कहा है कि शास्त्र के नियम बदलने वाले नहीं है। हमारे पिता तो जन्म जन्म में बदलते रहते हैं लेकिन शास्त्र के नियम नहीं बदलते हैं। तो शास्त्र में जो गुरुजी ने सिखाया है उसको ठीक तरह सीखने वाला उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसका? शास्त्र का। कैसे? जैसे गुरुजी सिखाते तो वो संसार के बंधन में कभी नहीं पड़ेगा। तो अब इस श्लोक के बाद दो चार श्लोक हैं उनके अंदर तात्पर्य नहीं है। अभिराम ठाकुर का थोड़ा सा उनके जीवनी का श्रवण करेंगे, लेकिन ये पूरे अध्याय का एक भाव ठीक तरह समझ लीजिए। इसमें इस अध्याय में आगे पीछे देखने से दो तीन बातें ध्यान में रखने जैसी है जो बहुत अपने जीवन में अभ्यास में लानी चाहिए। एक तो पुत्र अगर अच्छे हैं तो उनको भगवान के भक्त बनना ही अच्छी बात है, ये नारद कहते हैं। संसार में काय के लिए फंसाना? अगर बुद्धिमान है, तपस्वी है, साधु है तो वो भगवान का भक्त बने तो उसका भला होगा। पहली बात बहुत मुख्य ये है, अगर संतान आपको पुत्र है और गुणवान है तो भगवान का भक्त बने तो अच्छा है। हाँ, संसार के किसी भी काम में फंसाओगे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल ही नहीं पाएगा, तो फिर ऋषभदेव की शिक्षा के अनुसार पिता होने का अधिकार ही नहीं है अगर जन्म मृत्यु से निकाल नहीं सकते हो। नारद जैसे गुरुजन, उनकी शिक्षा कभी विफल नहीं जाती है। अच्छे समझदार बच्चे भगवान के भक्त बने तो अच्छा है। चाहे कोई उसके लिए आपको शराब पीते तो शराब को सहना चाहिए, लेकिन बच्चे को भक्त बना देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे दक्ष ने नारद को श्राप दिया, ऐसे मेरे धनी शिशु के बापू ने मुझे भी श्राप दिया है। मैं भी कहीं 3 दिन से ज्यादा रह नहीं सकता हूँ। एक मंदिर में जाता हूँ, इतना बड़ा लोगों ने भक्तों ने कमरा बनाया, सुख सुविधा, लेकिन रह नहीं सकता हूँ। मेरे को भी श्राप दिया है, जैसे दक्ष ने नारद को श्राप दिया, मेरे को भी श्राप है। मैं भी घूमता रहता हूँ, एक जगह बैठ नहीं पाता हूँ। तो पहली शिक्षा ये है कि अच्छा बच्चा भक्त बने तो अच्छी बात है, वो तो 21 कुल तार देगा, वो भक्त बन जाए तो अच्छा। और दूसरा आगे आएगा कि दोबारा दक्ष ने बच्चे नहीं पैदा किए, बच्चियां पैदा की। इसका मतलब कन्या की जीवन में बहुत जरूरती है, तभी सृष्टि बढ़ती है, नहीं तो नहीं बढ़ती। बच्चे साधु बन जाए तो अच्छा है, लेकिन बच्चियां हर हाल में सृष्टि बढ़ाने का मुख्य काम करती हैं। तो इसके बाद 60 पुत्रियां जब दक्ष करेगा पैदा, तो उनको साधु बनाने का कोई नियम नहीं है, उनको सृष्टि करनी है, और उनके द्वारा सारी सृष्टि हुई है। ये जितनी सृष्टि में जो भी पुरुष पैदा हुए हैं, उन 60 दक्ष की कन्याओं से हुए हैं। इसका मतलब कि जीवन में कन्या इस भगवान के सृष्टि के कार्य में महत्वपूर्ण है, उसका सम्मान भी करना चाहिए और उसके जन्म में बाधा नहीं बनना चाहिए, और दुनिया इसमें बाधा बन रही है। तो ये जो अध्याय है, मुख्य रूप से समझदार बच्चों को भक्त बनाना बुद्धिमानी है, और बच्चों की उत्पत्ति में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सृष्टि कम हो जाएगी, और सृष्टि कम होने से धर्म कम हो जाएगा, धर्म कम हो जाएगा तो लोगों में मानवता कम हो जाएगी। अभी ऐसी स्थितियां हो रही हैं, आप देख लीजिए, ऐसी स्थिति हो रही है कि बच्चे एक से ज्यादा है नहीं, तो आने वाले 25 साल में वो कुल ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा दुनिया का रिसर्च है, कुल समाप्त हो जाता है, जहां 2.5 से ज्यादा बर्थ रेट नहीं होता है, मतलब 2 फैमिली में 5 बच्चे अगर नहीं है तो आगे चल के वो कुल ही समाप्त हो जाए, 25 साल में कुल ही समाप्त हो जाए। और आज देखा ये जा रहा है, हम सुन भी रहे हैं रोज, एक ही बच्चा है, और वो भी एक बच्चा, क्योंकि अभी कोई ज्यादा तो है नहीं, तो खर्चा सारा उसके ऊपर करते हैं, और वो कहता है मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा, और एक बार वो बाहर जाता है वो तो आता नहीं है कभी, और फिर वो माँ बाप बेचारे ऐसे ही सारी उम्र पड़े हुए दुख भोगते रहते। फायदा क्या हुआ, कोई लाभ हुआ उसका, उसका भविष्य अच्छा होगा, उसका बेटा उसको ऐसे छोड़ के जाएगा, तो भविष्य कहाँ किसका अच्छा हो रहा है। जो जीते नहीं सेवा कर रहे हैं, वो मरने के बाद कौन सा पिंड दान करेंगे, जीते तो पानी नहीं पिला रहे हैं, तो मरने के बाद कौन सा जो है आपको हलवा खिलाएंगे। तो इसका मतलब है कि कन्याओं के द्वारा जो सेवा होती है वो सृष्टि की बहुत अच्छी है, उनका ध्यान रखें। ये नारद की शिक्षा से बहुत मुख्य, और ये 10 बातें जीवन में समझनी चाहिए कि शरीरों के चक्कर से मुक्त होना है, ये भोग के लिए नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए है, और भगवान के पास वापस जाने से ही मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो इस संसार रूपी नदी में जन्म मृत्यु चलता रहता है। और ये बुद्धि अगर कृष्ण भावना भावित नहीं हुई तो ये बुद्धि वैश्या स्त्री की तरह हमारे को हमेशा भटकाती रहेगी, और ये काल का चक्कर किसी को भी नहीं छोड़ता है, ये काल सबके ऊपर भारी पड़ता है। और शास्त्र को मानना चाहिए, शास्त्र के नियम को मानना चाहिए, शास्त्र का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। और कल के तो श्लोक में भानु स्वामी महाराज जब कह रहे थे कि नारद ने उपदेश कौन सा दिया, बोला निगम का उपदेश दिया, निगम क्या है, बोला भागवत। तो इसका मतलब भागवत पढ़ने से हमारे को भागवत भगवान की प्राप्ति होगी। अब आज 5 मिनट में हम पढ़ते हैं अभिराम ठाकुर का, आज तिरुभाव तिथि है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में अभिराम ठाकुर की 13वीं तिरुभाव तिथि है। अभिराम ठाकुर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं में गोप था, श्रीधामा गोप था। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि नवदीप चले, तो वो चेतन महाप्रभु के रूप में बलराम जी को साथ नित्यानंद के रूप में और गोपों को वहाँ ले गए। उस वक्त ये श्रीधामा जो गोप था ये किसी गुफा में छुपा हुआ था और पीछे रह गया, ये पीछे रह गया तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य के बाद नित्यानंद को कहा जा भाई श्री धाम आया नहीं है ले आऊ। तो नित्यानंद ने जाके वृंदावन में कहा कहाँ हो श्री धामा कहाँ हो आओ आओ। तो अंदर से श्री धामा निकला किसी गुफा से। तो नित्यानंद ने कहा देखो भाई हमको चलना है वहां कृष्ण तो नवदीप चले गए। बोला तुम हो कौन? बोला मैं बलराम हूं तुम जानते नहीं हो। बोले तुम बलराम इतने छोटे कैसे हो गए? अभी नित्यानंद तो कल युग में अवतार लिया तो 3.5 हाथ था मतलब 5.5 फुट और अभिराम जो था श्रीधामा वो द्वापर था वो 7 हाथ का था वो इसका मतलब 10 फुट का था। वो बोलता क्या तुम बलराम हो? मैं नहीं मानता हूं। तो नित्यानंद ने कहा फिर एक शर्त लगाओ तुम भागो तुम्हारे को मैं 10 हाथ आगे जाने से पहले पकड़ लूंगा तो मान लोगे? तो आगे श्रीधामा भागा और नित्यानंद ने पकड़ लिया उसको तो मान लिया कि ये बलराम ही ये काम कर सकता है। बोला अब तुम चलो। बोला नहीं चलूंगा आप लोग मुझे छोड़ के क्यों गए? वो गुस्सा करके बैठ गया। बोला नहीं चलना है मेरे को मैं नहीं चलूंगा वहां। और फिर कहा कि नहीं नहीं तुमको चलना चाहिए मंगाया है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। बोला ठीक है फिर मैं अभिराम दास या रामदास के नाम से मैं वहां प्रकट होता हूं। तो उनका अभिराम दास से रामदास नाम है और वो इतना शक्तिशाली थे ऐसा लिखा है कि नित्यानंद का पुत्र का जन्म हुआ उसने जाके प्रणाम किया वो मर गया। 7 पुत्रों का ऐसे जन्म हुआ और 7 के 7 मर गए और लोग डरते थे अभिराम ने किसी को प्रणाम किया तो मर जाएगा बच गया तो कोई बहुत शक्तिशाली है। फिर नित्यानंद के घर में एक लड़की हुई गंगा देवी उसको प्रणाम किया कुछ नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको तो कुछ भी नहीं हुआ ये गंगा देवी को कुछ नहीं हुआ और उसके बाद वीरभद्र का जन्म हुआ तो उसको प्रणाम किया सब डर रहे थे लेकिन प्रणाम किया तो कुछ नहीं हुआ। तो वीरभद्र अष्टक बनाया अभिराम ने कि ये बड़ा शक्तिशाली जो तत्व है जिनको माया का जिसके ऊपर प्रभाव नहीं है वही बचता है बाकी सब जो है समाप्त हो जाते हैं। सो अभिराम ठाकुर का आज तिरुभाव तिथि है और इसके बाद लिखा है अभिराम ठाकुर ने दोबारा जन्म लिया वो किसी पत्थर को भी सालंगराम के अलावा किसी पत्थर को प्रणाम करता था ना पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर चूर चूर हो जाता। सिर्फ भगवान का सालंगराम का शिला को छोड़ के कोई भी पत्थर को प्रणाम करें तो एकदम पत्थर टूट जाता था। तो अभिराम ठाकुर से सब लोग डरते थे और एक बार अभिराम ठाकुर रघुनंदन ठाकुर से मिलने के लिए गए। उन्होंने बोला ये तो प्रणाम करेगा तो ठाकुर जी को चले बसेंगे। तो लोगों ने कहा घर में ही नहीं है तो वो वापस से चले गए। तो फिर अभिराम ठाकुर को पता लगा वो पीछे पीछे जाके उन्होंने ही प्रणाम करके उनसे मिले जाकर। तो इस प्रकार से अभिराम ठाकुर को फिर एक जगह लिखा है रघुनाथ ठाकुर उनसे जब मिले रघुनंदन ठाकुर तो बड़ा नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते उनके जो पांव में घुंघरू बंधे हुए थे वो घुंघरू नीचे गिर गए और वहां जहां वो गिरा वहां काली कृष्णदास का भजन का स्थान था और काली कृष्णदास का जहां ठाकुर जी विराजमान है वो कड़वी नाम के स्थान में बंगाल में खटवा में वहां वो निपुर क्योंकि उनको कुछ नहीं हुआ लेकिन एक निपुर टूट के गिर गया अभिराम ठाकुर से मिलने से। तो निपुर अभी भी वहाँ एक पूजा के लिए रखा हुआ है कड़वी में जहाँ उनके पूजित विग्रह हैं। अभिराम ठाकुर श्रीपत इज एट कनखुल कृष्णनगर जो जगह है वहाँ उनका स्थान है जहाँ ट्रेन के रास्ते जाया जाता है ये समाचार है। उनकी पत्नी का नाम मालिनी देवी है और उनने गोपीनाथ जी की ठाकुर जी की पूजा करते थे जो उनके स्वप्न में आए थे उस गोपीनाथ का वो हमेशा पूजा किया करते थे और उनके अभी भी कुल के लोग जीवित हैं इस धरती के ऊपर। गोपीनाथ जी का अभी भी लीलाएं वह निरंतर गंगा की धारा की तरह चल रहे हैं। एक दिन उनके मन में आया कि मैं पहले गोप था, मेरे को बांसुरी बजानी चाहिए। अब बांसुरी बजाने का मन में आया तो बांसुरी ढूंढते ढूंढते एक बहुत बड़ी लकड़ी का पेड़ों का झुंड पड़ा था जो 10-20 आदमी नहीं उठा सके। हाँ, इतना बड़ा पेड़ गिरे हुए थे, 16 आदमी भी उठा ना सके। उनमें से इसने एक निकाला, उसमें से एक बांसुरी बनाई और उसको बजाने लगा। और रामदास के उस बांसुरी बजाने से, उसका नाम दूसरा रामदास है, चेतन चैतन्य में लिखा है कि वो 16, जैसे बांस की लकड़ी में गांठ होती है, 16 गांठ वाली लंबी लकड़ी को उसने बहुत बड़ी बांसुरी बनाई। और श्रीनिवास आचार्य एक दिन उनसे मिलने आए और 3 बार एक लिखा है कि अभिराम ठाकुर के पास एक ऐसा कोड़ा होता था जो आता था उसको मारता था, और जिसको मारता था वो हरे कृष्ण बोल के नाचता था। तो जिसको लग जाए कोड़ा तो समझ लो उसको कृष्ण प्रेम मिल गया। तो श्रीनिवास छोटा बच्चा आया, उसको 3 कोड़े दे मारे। तो उनकी पत्नी ने कहा, ये बच्चा है, मर जाएगा, इतने कोड़े क्यों मार रहे हैं इसको। और तब तब वो कृष्ण प्रेम में मदमस्त हो गया। पत्नी का इतने मत मारो, ऐसे ये तो छोटा बच्चा है। लेकिन श्रीनिवास एकदम कृष्ण प्रेम में डूब गए। जब चेतना महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप बंगाल में प्रचार करो, तो उनको साथ रामदास को, अभिराम ठाकुर को भेजा, गदाधर दास को भेजा और सबको भेजा। और जो नास्तिक थे अभिराम का नाम सुन के उसके आगे नहीं आते थे, डर के भाग जाते थे। और शास्त्र का बड़ा विद्वान थे, नित्यानंद प्रभु की इच्छा के अनुसार उन्होंने विवाह किया। उनका तिरुभाव तिथि 7वें दिन पे होता है, अंधेरी के इस महीने चैत्र में। और उनके जो शिष्य है अभिराम ठाकुर के, वो आज भी हुगली में रानपुरा, हुगली और रानपुरा में, कृष्णनगर में, अमत में, विष्णुपुर में और कोटपुर में रहते हैं। तो ये अभिराम ठाकुर की जीवनी से कि भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाल बाल गोप थे, उनमें से श्रीधाम गोप था और श्री चेतना महाप्रभु की लीला में बाद में ये प्रवेश हुआ। और अभिराम गोप जो नित्यानंद का साथी रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसका आज तिरुभाव तिथि है, इसका श्रवण किया। और कोई किसी का प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।